बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 7 दिसंबर दिन शनिवार। मैं हूं मोहम्मद शाहिद। तेलंगाना पुलिस ने 4 रेप अभियुक्तों को एनकाउंटर में मारा। अभियुक्तों को सजा देने का अधिकार किसका, अदालत का या पुलिस का? हैदराबाद की कथित पुलिस मुठभेड़ और तमाम अनुत्तरित सवालों का जवाब कौन देगा? आज बीबीसी इंडिया बोल में चर्चा होगी इसी विषय पर। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन कॉल करें 1811-7000 या 1811-7001 पर। कार्यक्रम में चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर सूरत सिंह। साथ ही चर्चा में शामिल करेंगे टेलीफोन के जरिए आपकी राय भी। लेकिन पहले थोड़ा इंतजार और सबसे पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। उन्नाव की गैंग रेप पीड़िता की शुक्रवार देर रात दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। 90% तक जल चुकी पीड़िता को गुरुवार को गंभीर स्थिति में लखनऊ से दिल्ली लाया गया था, जहां शुक्रवार की रात उन्होंने अंतिम सांस ली। पीड़िता की मौत पर देश भर में जगह जगह लोगों ने प्रदर्शन किया और त्वरित न्याय की मांग की। तमाम राजनीतिक हस्तियों ने भी इस पर दुख जताते हुए न्याय की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने लखनऊ में विधानसभा के सामने धरना दिया तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रशासन को सोचना चाहिए कि इस तरह के मामले क्यों हो रहे हैं। उन्होंने कहा,
जिस तरह के अपराध रोज रोज महिलाओं पे हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है। मुझे तो लगता है कि उन्होंने जो उत्तर प्रदेश बनाया है उसमें महिलाओं के लिए कहाँ जगह है। अगर महिला इधर से उधर तक अकेली नहीं चल सकती, भय में उसको रहना पड़ रहा है, वो काम के लिए 9 साल की महिला अगर स्कूल जाने से डर रही है क्योंकि उसको धमकाया जा रहा है, वो कैसा प्रदेश बनाया आपने।
वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट ले जाया जाएगा। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की भी घोषणा की गई है। ईरान का कहना है कि वो अमेरिका के साथ कैदियों की अदला बदली को लेकर एक समझौते के लिए राजी हो गया है। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने कहा कि इस स्वैप यानी अदला बदली में मसूद सुलेमानी का स्थानांतरण भी शामिल होगा। वो ईरानी वैज्ञानिक जिन्हें अमेरिका ने व्यापार प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था, उन्हें एक अमेरिकी पीएचडी छात्र जियू वांग के बदले वापस भेजा जाएगा। वांग को जासूसी के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि दोनों ही शख्स किसी भी तरह के आपराधिक कृत्य में शामिल होने से इनकार करते आए हैं। अमेरिका की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। ऑस्ट्रेलिया में अग्निशमन दल सिडनी के उत्तर में लगी आग को लेकर चेतावनी जारी की है। उनका कहना है कि इस आग को काबू कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है, ये महानगरीय सीमा से बाहर बढ़ रही है। अधिकारियों ने लोगों को आग से बचने के लिए सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी जारी की है। ये आग 5 अलग अलग आगों का परिणाम है। न्यू साउथ वेल्स में आपातकालीन सेवाओं के मंत्री डेविड एलियट का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में ये अब तक की सबसे भयानक आग है। उन्होंने कहा कि ये जुलाई महीने में शुरू हुई थी और झाड़ियों में लगी इस आग को साल के शुरू होने से पहले यूं देखना बेहद तकलीफदेह है। एलन मस्क ने कहा है कि अदालत के फैसले ने एक बार फिर न्याय व्यवस्था में उनके यकीन को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि ज्यूरी ने 1 घंटे से भी कम समय में अपना फैसला दिया और इससे उनका यकीन मजबूत हुआ है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को मानहानि के मामले में अदालत ने बरी कर दिया है। ब्रिटिश गोताखोर वर्नोन अन्सवर्थ ने मस्क के खिलाफ पिछले साल मुकदमा किया था। मस्क ने ट्विटर पर अन्सवर्थ को पेडो कहा था। अन्सवर्थ का कहना था कि मस्क का आशय पीडोफाइल से था। उनका कहना था कि मस्क की टिप्पणी को उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने वाला माना जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने मानहानि का दावा किया था। उनके लीगल टीम का हिस्सा रहे मार्क स्टीफन ने इसे एक गलत नजीर पेश करने वाला फैसला बताया है। उन्होंने कहा, अगर हम ट्विटर पर मानहानि के लिए किसी को मुकदमा नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया के नज़रिए से ये बहुत परेशान करने वाला है। ऐसा हुआ तो लोग बिना किसी आधार के किसी पर भी किसी भी तरह के आरोप लगाने लगेंगे। समाज के लिए ये सबसे ज़्यादा बुरा होगा। मार्क स्टीफन के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बगदाद में एक अज्ञात हमले में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है। ये लोग सरकार विरोधी प्रदर्शन कर रहे थे। इस हमले के बाद इराकी सेना का कहना है कि वे बगदाद शहर के बीचों बीच तैनात होंगे ताकि प्रदर्शन कर रहे लोगों को सुरक्षा दे सकें। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी रेडियो सेवा के साप्ताहिक कार्यक्रम इंडिया बोल में, और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। श्रोताओं, हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं और कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुफ्त फोन कॉल करिए। हमारे नंबर नोट कर लीजिए, 1811-7000 या 1800-102-7001। एक बार फिर नंबर सुनिए, 1811-7000 या 1800-102-7001। श्रोताओं, हैदराबाद के नज़दीक 27 से 28 नवंबर की दरमियानी रात को वेटरनरी महिला डॉक्टर के साथ सामूहिक बलात्कार और उसको जलाकर मार डालने की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस मामले में 4 अभियुक्तों को पकड़ा गया था और कल एनकाउंटर में उनके मारे जाने की खबर आई। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अभियुक्तों ने पुलिसकर्मियों से हथियार छीने और उन पर हमला किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और संगठनों ने इस घटना को फर्जी एनकाउंटर बताया है, वहीं कई लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने एनकाउंटर की निंदा की और कहा कि अगर अपराधियों को ऐसे मार दिया जाएगा तो अदालत और कानून का क्या फायदा होगा। हैदराबाद की इस पुलिस मुठभेड़ के अनुत्तरित सवालों के जवाब आखिर कौन देगा? हमारे साथ स्टूडियो में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर सूरज सिंह मौजूद हैं। डॉक्टर सूरज सिंह जी, आपका बीबीसी इंडिया बोल में बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
डॉक्टर सूरज सिंह से बात शुरू करने से सबसे पहले हम पूर्व आईपीएस अधिकारी विभूति नारायण राय को सुनते हैं। मई 1987 में हुए हाशिमपुरा फर्जी एनकाउंटर के बाद इस मामले की विभूति नारायण राय ने जाँच की थी। मेरी उनसे बात हुई और मैंने पुलिस की कार्यशैली और इस एनकाउंटर से जुड़े कुछ सवाल पूछे।
देखिए, ये एनकाउंटर जितना मैंने पढ़ा इसके बारे में, मुझे तो पूरी तरह से फर्जी नजर आ रहा है। और अगर एनकाउंटर जेन्युइन हो जिसमें अपने डिफेंस के लिए पुलिस को गोली चलाना पड़े, तो पुलिस को क्या, वो तो किसी भी भारतीय नागरिक को अधिकार है कानून में कि अपने सेल्फ डिफेंस में वो दूसरे की जान ले सकता है। लेकिन ज्यादातर पुलिस एनकाउंटर जिसमें सेल्फ डिफेंस में फायर करना दिखाया जाता है, वो वैसा होता नहीं जैसा कहा जाता है। और इस मामले में तो मैं 100% मेरे मन में शक है कि ये एनकाउंटर जेन्युइन था कि नहीं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात इस पूरे घटनाक्रम में है वो ये है कि पूरे देश में इसको लेकर के खास तरह के उल्लास का माहौल था। लोग मिठाइयां बांट रहे थे, पुलिस पर फूल बरसा रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। यहाँ तक कि हमारी हिंदी की एक लेखिका भी सिद्धा का समर्थन करते हुए कल दिखी। तो ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है। राज्य को ये सोचना चाहिए कि बजाय पुलिस को हिंसा के लिए प्रोत्साहित करें और पुलिस को एक हायर्ड असैसिन्स का गैंग बनाएं, ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपनी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करें, प्रक्रिया ऐसी बनाएं। जैसे इस मामले में अगर हमारी कानून व्यवस्था चुस्त होती तो हम 15 दिन के ट्रायल के बाद इनको फांसी की सजा दे सकते थे। और निर्भया जैसा अनुभव अगर नहीं होता कि जिसमें 6-7 साल से जेल में बैठ करके वो इंतजार कर रहे हैं, तो इन्हें भी हम फांसी चढ़ा सकते थे। फांसी हालांकि एक बर्बर सजा है और मध्ययुगीन असभ्यता है, मैं तो उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन कम से कम फांसी जब चढ़ाना एक लीगल तरीके से, वो ज्यादा जायज होता बजाय इसके कि पुलिस को ये इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए, पुलिस का समर्थन किया जाए।
ये थे पूर्व आईपीएस अधिकारी विभूति नारायण राय। वापस आते हैं हम आज के अपने खास मेहमान डॉक्टर सूरज सिंह के पास। सूरज सिंह जी, आपने विभूति नारायण राय को सुना, मेरा भी आपसे पहला सवाल है कि क्या जो ये पुलिसिया एनकाउंटर कानून की नज़र में क्या किसी खास चश्मे से देखने की ज़रूरत होती है? क्योंकि देखा गया कि सीआरपीसी में कहीं भी एनकाउंटर जैसा कोई शब्द नहीं मिलता है।
देखिए, ये जो है एक अपने आप सोल्यूशन डेवलप करने वाली बात है। जैसे लोग अगर इंसाफ ना मिले तो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, लेकिन उसके दोनों ही पक्ष हैं। जैसे जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इसी तरह से जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। तो दो जो एक्सट्रीम है उन पे हमको देखना पड़ेगा। एक तरफ तो बिल्कुल ठीक कहा राय साहब ने कि अगर हमारी कानूनी व्यवस्था चुस्त होती तो शायद ये नौबत ना आती। निर्भया का केस है, 6-6 साल लग रहे हैं, इतना जघन्य अपराध हुआ था, उसमें 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। तो उससे लोग तंग आ जाते हैं कि भाई अपराधी बाहर घूम रहा है जुवेनाइल का नाम लेके या कुछ भी लेके, तो तो लोगों में त्रास, लोगों में निराशा, फ्रस्ट्रेशन तो होती है, लेकिन साथ ही अगर इस तरह से हम करने लगे तो बहुत सी चीज़ ये आ जाती है कि आप जो हैं वस्तुतः दोषी आदमी को मार रहे हैं या निर्दोष को तो नहीं मार दिया, क्योंकि कानूनी व्यवस्था के बिना कैसे पता चलेगा। जैसे कैसे हमें पता कि ये चार लोग वही थे, कैसे पता कि ये हथियार छीन रहे थे, क्या जो है अगर हथियार छीन रहे थे पुलिस थी, कोई सिविल लोग नहीं थे, पहले अपने आप को बचाने के लिए पाँव में गोली मारते हैं जिससे आदमी डिसेबल हो जाए, पहले आदमी को डिसेबल किया जाता है, सीधे अटैक जो है फेटल अटैक नहीं किया जाता, सुरक्षा की जाती है। आप मान लीजिए चार लोग भागने की कोशिश करें और आपने उनके घुटनों पे या पाँव पे गोली मार दी तो कहाँ से भागेंगे।
सर अगर हम कानूनी पहलू पे आए, जो एनकाउंटर जैसी जो चीज़ है सीआरपीसी में भी नहीं मिलता, तो ये इसके कानूनी पहलू क्या है, क्या पुलिसिया एनकाउंटर जैसी चीज़?
ये बॉम्बे फिल्म में जैसे फिल्मों में होता है ना कि एक इंस्पेक्टर सारे गवर्नमेंट को सारे उससे ऊपर अपने आप ही इंसाफ लेने चला जाता है, उस तरह की थिंकिंग है, इस तरह का कोई वो नहीं है। और ज़्यादातर केसेस में ये एनकाउंटर फेक होते हैं। अभी पिछले महीने हमने एक केस किया, वहाँ कोई व्यक्ति बेंगलोर गया, पैसे का मामला था, पुलिस वाले से झगड़ा हो गया, फिर फेक एनकाउंटर दिखा दिया।
लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जैसे कुछ गाइडलाइंस दिए हैं कि आप कुछ मामलों में पुलिस को अधिकार है कि अगर उनकी जान पे बनाई है, और जिस तरीके से विभूति नारायण राय जी ने कहा कि जान का मामला जहां
उसके लिए एमिनेंट एंड प्रेजेंट डेंजर होना चाहिए। एमिनेंट एंड प्रेजेंट डेंजर का टेस्ट है कि इसका मतलब तुरंत जान पे बनाई है, क्योंकि वहां फिर वो बात गाली वाली बात होती है कि ये तो माना कि दगा फुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अगर ऐसी स्थिति है तो खाक होने से पहले आप बचा सकते हैं अपने आप को, लेकिन पहले ये तो दिखाएं कि क्या खाक होने का वाकई डेंजर था या आपने खुद बना लिया।
तो आगे की कानूनी प्रक्रिया पर अगर डिस्कस करें तो फिर क्या है? जैसे इस मामले में भी एनएचआरसी ने कह दिया कि इसकी जांच होगी,
एनएचआरसी ने भी कहा है, हाईकोर्ट जो तेलंगाना की है उन्होंने भी स्वतः ज्ञान लिया है, इधर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डल गई है, क्योंकि यहाँ समस्या यही आती है कि क्रिमिनल लॉ का शाहिद भाई सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो दोषी है वो छोड़ा ना जाए और निर्दोष को सजा ना मिले। अब ये कहने में तो आसान है लेकिन कैसे पता करेंगे कौन दोषी है? दोषी और दोष को कनेक्ट करने की जो प्रक्रिया है वो जो है चुस्त होनी चाहिए, स्विफ्ट होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ अगर अमेरिका में होती या इंग्लैंड में होती तो वो विद इन ए वीक इसका पता करके और डे टू डे ट्रायल करते और एक महीने में तो रिजल्ट ले आते।
जी चलिए रुक करते हैं हम अपने पहले कॉलर की तरफ। हमारे स्टूडियो मैनेजर शाकिर आलम हमें इशारा कर रहे हैं। जी मैं जान सकता हूँ मेरी किनसे बात हो रही है?
और हेलो
जी, आप नमस्ते, आप कहाँ से बोल रहे हैं और मेरी किससे बात हो रही है?
सर मैं जेएंडके से सर बोल रहा हूँ, मोहम्मद शफी डिस्ट्रिक्ट पुलिस से। सर
जी शफीक साहब,
सर बात यह है कि एनकाउंटर जो किया गया है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कसूर है कि जब गवर्नमेंट बनती है तो उसका फर्ज बनता है कि लोगों को तहफ़ देना, तहफ़ भी नहीं दे सकते, महिलाओं को तहफ़ भी नहीं दे सकते, और वो रेपटिस जो बलात्कारी थे वो उसको खुला आम घूम भी रहे थे, और उनको पुलिस ने जो कुछ किया है वो सही किया, ठीक है, ताकि किसी को डर तो पहुंचे ना, कोई डरे तो सही ना।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। रुक करते हैं अगले कॉलर का। जी मैं जान सकता हूँ मेरी किन से बात हो रही है? जी
हेलो,
आपको आवाज आ रही है, आप बताएं।
जी सर मैं शकील अहमद बोल रहा हूँ शाही बरेली से।
जी शकील साहब आप अपनी बात रखें।
जी साहब ये तो ऐसा ही महसूस हो रहा है साहब कि गैर कानूनी काम कोई गैर कानूनी ढंग से ही किया जा रहा है, कि आग को आग से ही बुझाने का अमल जारी है, कि फिर ये सारा सिस्टम अदालती सिस्टम ये पुलिस के ऊपर तो वैसे ही बहुत से ब्लेम अक्सर लगते ही रहते हैं, और ऐसे तो कोई भी ताकतवर आदमी, जैसे कि पुलिस यहाँ पर ताकतवर है, कोई भी ताकतवर आदमी अपना फैसला करने लगेगा और उसको जायज ठहरा दिया जाएगा, फिर तो सारा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। ऐसा बात
जी जी जी, रुक करते हैं अगले कॉलर का।
हेलो
जी मैं जान सकता हूँ मेरी किससे बात हो रही है?
सर नमस्कार।
जी नमस्कार, बताएं आप अपना नाम बताएं।
आपको भी नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार
जी। मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, मोरबी के पास छोटा सा गांव है, आमरण नाम है
जी।
बीबीसी को 50 साल से सुन रहा हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपनी राय रखें, आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे विषय पर?
सर
जी
मनुस्मृति में नारियों का दर्जा छोटा था, लेकिन भारत स्वतंत्र हुआ, संविधान बना, इंडिपेंडेंस इंडिया में बराबरी का दर्जा मिला
जी।
सर अभी कांड हुआ जिसकी रेवाड़ी हरियाणा का कांड हुआ
जी जी,
उन्नाव का दो पीड़िता का एक बदकिस्मत से उसका एक का इंतकाल हो गया, एक दूसरी दवाखाने में है दिल्ली में
जी। अपनी राय रखें आप जी बिल्कुल।
कठुआ की 8 साल की बच्ची को रेप और बेरहमी से मारा
जी जी,
वो दरिंदों के हम तरफदार नहीं है, उसको कानून के दायरे में जल्दी से जल्दी सजा क्यों नहीं मिलती सर
जी जी बिल्कुल।
निर्भया कांड का आरोपी 7 साल से
जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अगले कॉलर को और ले लेते हैं जी। बताएं आप कहां से बोल रहे हैं?
हेलो, मैं ऋचा श्रीवास्तव बोल रही हूं अमरकंटक से।
जी ऋचा जी, आप अपनी राय रखें।
जी मेरी राय ये है कि न्यायिक व्यवस्था सशक्त होनी चाहिए
जी,
और जो पुलिस का एनकाउंटर हुआ है वो बिल्कुल भी बिल्कुल गलत है
जी,
और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था
जी,
थोड़ा उनको वेट करना चाहिए था। और हमारे सरकार ने निर्भया कांड से लेकर अभी तक कोई भी इतने कठोर कानून बनाए ही नहीं है कि लोगों को क्योंकि मन में विश्वास हो, इसलिए कहीं ना कहीं लोग इसको इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनको सेटिस्फेक्शन है कि जल्दी से जल्दी न्याय मिल गया, मतलब बेटर लेट देन नेवर।
बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। सूरज सिंह जी, आज एक और दर्दनाक खबर आई, उन्नाव गैंगरेप की पीड़िता जो थी वो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उनकी मौत हो गई। अभियुक्तों ने कथित तौर पर उन्हें जिंदा जलाया था। इस घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने अभियुक्तों के एनकाउंटर की मांग की है। वहीं आज देश के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने कहा है कि न्याय बदले की भावना से नहीं किया जाना चाहिए। एक ओर तुरंत न्याय देने की बात की जा रही है तो वहीं दूसरी ओर मुख्य न्यायाधीश कहते हैं कि बदले की भावना से न्याय नहीं होना चाहिए। और आपने जैसे कॉलर्स को भी सुना, कुछ पक्ष में है कुछ विपक्ष में उनका मामला है, तो क्या लगता है आपको? आप दूसरी ओर आप ये भी देखते हैं कि संसद में पार्लियामेंटेरियंस जो है इस फैसले की प्रशंसा करते हैं जिनके कंधों पे न्याय व्यवस्था बनाए जाने की जिम्मेदारी है, तो ये क्या लगता है अगर ये एक चल निकलेगा तो न्यायतंत्र कहाँ जाएगा?
देखिए, अगर तुरंत न्याय हो जाए, दो शब्द हैं यहाँ, तुरंत और न्याय, तो सब खुश होंगे। लेकिन आप ये कैसे निश्चित करेंगे कि यहाँ न्याय हुआ है? पहले तो आप ये कैसे निश्चित करेंगे कि ये 4 लोग वस्तुतः दोषी थे, है ना? आरोप था, मान लो पुलिस की रेपुटेशन अनफॉर्चुनेटली अच्छी नहीं है। मुझे मालूम है कि पुलिस वाले बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, पूरी सुविधाएं भी नहीं है और अपनी जान पे खेल के न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ ही पुलिस ने अभी लोगों की विश्वसनीयता जीती नहीं है। तो जैसे यही चीज अगर अमेरिका की या इंग्लैंड की पुलिस करती तो किसी को भी डाउट नहीं होता, लेकिन अगर इंडिया की पुलिस करती है तो सोचते हैं कि क्या वस्तुतः वो दोषी थे कि नहीं थे। तो दूसरे जो पुलिस का वर्जन आ रहा है कि 4 दिन से वो उनके पास हैं, उनको वो दिखाने जा रहे हैं ये जगहें और वहां फिर हथियार छीन रहे थे, अरे भाई उनके पास खुद के पास तो हथियार थे नहीं।
लेकिन यहाँ पुलिस की विश्वसनीयता के साथ साथ न्याय व्यवस्था न्यायपालिका पर भी तो एक अविश्वास जैसी चीजें हैं।
वो तो है ही, तभी तो लोग क्यों इसको अच्छा बता रहे हैं, क्यों इसका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ च्वाइस क्या है कि 6-6 साल 7-7 साल आदमी जिस जो निश्चित हो गया कोर्टों ने, ट्रायल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सिद्ध कर दिया कि यही व्यक्ति है, उसके बावजूद भी उसमें टाइम लग रहा है, उसके बाद भी दया याचना लगा रहे हैं
निर्भया गैंगरेप में,
उसमें दया की, जब उसने दया नहीं थी तो किस दया का भागी है? तो हमारे न्याय व्यवस्था में भी तो बहुत बड़ी त्रुटि है कि इंसाफ जो है 6 महीने तक सच्चाई कोर्ट के सामने आती नहीं है, इसका मतलब झूठ बोलने वाला आदमी 6 महीने तक तो बचा रहेगा। तो हमारी जो व्यवस्था है एक तो ओवरबर्डन है क्योंकि रिसोर्सेज कम है, अपराध केसेस ज़्यादा हैं, अब 1 लाख से ज़्यादा रेप केसेस पेंडिंग है, तो यहाँ अगर व्यवस्था को ठीक नहीं करोगे तो लोग फिर इसी तरह से करेंगे। ये न्याय तो है लेकिन ये जंगल न्याय है।
ये जंगल न्याय बात कर रहे हैं आप। रुक करते हैं एक अगले कॉलर का और जानते हैं कि उनकी राय क्या है। जी हेलो,
हेलो
जी, मैं जान सकता हूँ मेरी किससे बात हो रही है और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
हेलो
जी, हेलो, आवाज आ रही है आपको?
हाँ जी आ रही है
जी।
मैं वीरेंद्र सिंह चौहान, रिटायर्ड गार्ड
जी,
85 साल उम्र
जी। वीरेंद्र,
उत्तर प्रदेश कासगंज डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ।
बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी, आप इतनी अच्छी खासी उम्र भी है आपकी, आपको बहुत अनुभव है, आप क्या बताएंगे, आपकी क्या राय है बताए?
मैं ये बताऊंगा
जी
कि मुझे कल BBC पे ही खबरों में ये पता लगा, कोई कमला भसीन है, उन्होंने इसको और ये जो मतलब वो है
जी
पीलीभीत वाली इसकी मेनका गांधी, इन्होंने जो है जी, इस काम को जी, बहुत गलत बताया। मैं तो कहता हूं कि ये काम होना चाहिए
जी।
वो जो हमारा संविधान बना था वो उस वक्त के लिए बना था, आज के लिए नहीं बना था। जो 16 साल और 15 साल के लड़के जिनको कहा जाता है कि नाबालिग है, वो नाबालिग नहीं है, वो दुराचार करते हैं। 2012 वाला केस जो अभी तक पड़ा है, तो इसका मतलब तो न्याय प्रक्रिया तो बिल्कुल बेकार है, न्याय तो अंधा हो गया। ये पुलिस वालों ने बहुत बढ़िया किया और ये काम जो है आगे ऐसी तरह करना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया आपको अपनी राय रखने के लिए। रुक करते हैं अगले कॉलर का। हेलो,
हाँ नमस्ते। हेलो
जी, नमस्ते, आप बताएं अपनी राय।
मैं योगेश भोटे एनटीपीसी भरूच गुजरात से बोल रहा हूँ।
जी योगेश जी बताएं।
ऐसा है कि ये जो घटना हुई है वो किस स्थिति में हुई और कब हुई, इस पर इस घटना की मेरिट निर्भर है कि पुलिस ने जो एनकाउंटर किया, अगर सचमुच अगर उनको एनकाउंटर करने के लिए बाध्य होना पड़ा, उनको हथकड़ियां बांधी हुई थी, पहनाई गई थी, उसके बावजूद भी वो भागने करने का प्रयास करने लगे और हथियार छीनने की और गोलीबारी करने की कोशिश करने लगे, तब बात सही है। परंतु ये बात है कि उनको आप घटनास्थल पर प्रमाणों के पुष्टि के लिए सुबह 5 बजे या 6 बजे क्यों लेके गए, उनको सुबह 10 बजे क्यों नहीं लेके गए। इससे यह जो कार्रवाई जो हुई है
जी,
ये जरा संशयास्पद लगती है कि इन्होंने भले ही न्याय किया परंतु अवसरवादी तरीके से न्याय किया। प्रॉपर सिस्टम ऑफ लॉ एंड जो जस्टिस है उसको फॉलो करके अगर किया होता तो सही होता, परंतु फिर भी हमारी जो लॉ एंड जस्टिस सिस्टम है उसको भी बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ऐसे केसेस जो होते हैं
जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको अपनी राय रखने के लिए। वापस आते हैं सूरज सिंह जी आपके पास। आप इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत वरिष्ठ वकील हैं, जो बलात्कार के जो अब तक मामले आपकी नज़रों से गुजरे होंगे, तो उसमें आप किस तरीके से देख पाते हैं कि मौत की सज़ा के मामले आप देख पाते हैं कि कितने हो पाते होंगे, जहां हत्या की बात आती है, जहां बलात्कार के साथ हत्या का मामला आता है, वहां रेप का वहां मौत की सज़ा का प्रावधान हो जाता है
और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेज में आता है जिसमें फांसी की सज़ा हो जाती है, लेकिन पहले ट्रायल कोर्ट। अब देखिए हमारी समय कितना लगता है, पहले ट्रायल कोर्ट सारा एविडेंस वो करेंगी
जी।
उसके बाद फिर अगर मौत की सज़ा दे दी तो हाई कोर्ट उसको कंफर्म करेंगी। अब जैसे निर्भया वाले केस में ऑनरेबल जस्टिस खेतपाल ने बहुत ही जल्दी जो है थोड़े समय में ही उस चीज़ को कंफर्म किया, बड़ी मेहनत करके, तो फिर भी समय लग गया। तो एक तो हमारे यहाँ समय लग ही जाता है क्योंकि कोर्ट भी मजबूर है, उनके पास केसेज ही इतने, डे टू डे हियरिंग भी करें तो भी, दूसरे टेक्निकल चीज़ें बहुत हो जाती हैं। माफ़ करना, लॉयर अपनी तरफ से इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन कई बार जो है टेक्निकल चीज़ों का फ़ायदा भी उठाते हैं। तो जो ये कहावत है कि चाहे 100 दोषी छूट जाएं और एक निर्दोषी को सजा ना हो, इसको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा कि राइट जहाँ एक्यूज के हैं वहाँ विक्टिम के भी कुछ राइट हैं।
तो अगर कानूनी प्रक्रिया की अगर हम बात करें, अगर जिस तरीके से हर मामले के बाद ट्रायल कोर्ट, फास्टेस्ट कोर्ट, फास्ट कोर्ट बनाने की बात की जाती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की जाती है, अगर इस तरीके से न्याय हो, फास्ट हो, तो क्या लगता है आपको, क्या उससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, कुछ फायदे भी हो सकते हैं?
फास्टेस्ट कोर्ट हो, फास्ट कोर्ट हो तो नेचुरली फायदा होगा, लेकिन फास्ट कोर्ट भी तो टाइम ले जाती है ना, और लोग जो है तंग हो जाते हैं। जैसे निर्भया का केस एक इलस्ट्रेशन है, सब कुछ तय हो गया, अभी तक उनको फांसी नहीं दी गई है और प्रक्रिया अभी भी चल रही है। तो सपोज करो जो परिवारजन हैं उनके, उन पर क्या बीतती होगी, उनको इंसाफ क्या मिलता होगा। और देखने की बात शायद भाई ये है कि इतनी बड़ी सजा होने के बाद भी इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं, बंद नहीं हुई, फांसी की सजा के बावजूद भी इस तरह के वो हो रहे हैं।
क्या फांसी की सज़ा, जिस तरीके से हम विभूति नारायण राय को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि फांसी की सज़ा जो है वो एक मध्ययुगीन काल जैसी चीज़ है, तो यहाँ अगर हम बात करें, क्या फांसी की सज़ा से ही समाज सुधारा जा सकता है? आप एक वकील हैं, आपको क्या लगता है?
देखिए ऐसा है, फांसी की सज़ा अंतिम सज़ा है, उसमें सबसे बड़ी कमी ये होती है कि आपने जीवन दिया नहीं, आप जीवन ले रहे हैं। कल मान लो जिस व्यक्ति को आपने दोषी ठहराया और किसी भी कारण से, कोई और एविडेंस आने से लगे कि वो दोषी नहीं है, तो आप उसको कैसे जिलाओगे, है ना? तो ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि जो जीवन आप नहीं दे सकते उसको कैसे ले। लेकिन साथ ही ये है कि अगर सारा एस्टेब्लिश हो गया तो उसके बावजूद भी आपने दूसरे का जीवन लिया है, इन चीज़ों में हमेशा बैलेंस करना पड़ता है। तो यहाँ एक तरफ तो बैलेंस ये करेंगे कि निर्दोष व्यक्ति को सजा ना हो, हमें पुलिस ने एनकाउंटर करके किया और वो किया, उससे इतनी ज़्यादा चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है कि आप इस बात का पक्का कैसे करेंगे पुलिस ने सही आदमी को मारा।
जी चलिए रुक करते हैं, हमारे स्टूडियो मैनेजर शाकिर आलम बता रहे हैं कि एक कॉलर को और ले लिया जाए। जी
सर, मैं सागर मध्य प्रदेश से द्वारका पाठक बोल रहा हूँ सर।
जी द्वारका जी बताएं।
और मेरा ये कहना है कि ये जो इनकाउंटर हुआ है ये पूरी की पूरी हमारी व्यवस्था सारी दुरुस्त है, केवल हमारी न्याय व्यवस्था गड़बड़ हो रही है। 31 साल से न्यायालयों में केस चल रहे हैं जिनमें अंतिम न्याय नहीं मिल पा रहा, 35 साल से 25 साल से। हम उसकी ना तो बुराई कर सकते, ना आलोचना कर सकते, ना कहीं उसकी शिकायत कर सकते। हमारी न्याय व्यवस्था यदि दुरुस्त हो तो ये कुछ भी ऐसे एनकाउंटर और ऐसे रैपों को रोका जा सकता है। पुलिस ने जो किया है हजारों रैप्स को बचा लिया है आगामी होने वालों को।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी अपनी राय के लिए। और अब रुक करते हैं हमारे अगले कॉलर का। मैं जान सकता हूँ कोई कौन है?
हाँ मैं मोहन सिंह काजला बोल रहा हूँ, काजला ही दानी जिला धुरनो राजस्थान से।
जी काजला साहब बताएं आप क्या सोचते हैं?
मेरा मानना ये है सर, क्या ये अभी भी चर्चा हुई, कितने पुराने केस हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, कुछ अपराध भी इतने शक्तिशाली हैं तो वो ऐसा अपराध करके बच जाते हैं भाई, हम पैसे के बलबूते पर या हमारी सिफारिश है बड़े बड़े लोगों से बच जाते हैं। और ये जो कल जो कांड हुआ है ना, तो बगैर प्रीत मतलब नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ है। और जो उत्तर प्रदेश वाला वो है ना, उनको भी आग लगा के जला देना चाहिए पब्लिक के सामने।
सर ये आपकी राय है, बिल्कुल। हम रुख करते हैं अगले कॉलर का और आखिरी कॉलर। जी आप अपनी राय रखें।
जी सर जी, बिहार मधुबनी जिला से बोले जयशंकर सिंह।
जी जयशंकर जी बताएं आपकी क्या राय है इस पूरे विषय पर?
सर मेरा ये कहना है, जो भारत की संविधान की जो विधि व्यवस्था कानून बनी थी 10 साल पूर्व की है
जी,
और आज की परिवेश बहुत बदल चुका है
जी।
अपराध चरम सीमा पर आ गया है। एक तरफ जहां जो है ये जनता मरे हुए लाश के तरह है, एक तरफ पुलिस दबोचता है तो दूसरी तरफ अपराधी। इस बीच में न्यायालय जो है पूरा स्थूल बन गया है, निष्क्रिय जैसा बुझाता है। अब जनता को इतना हतोत्साह हो गया है, वो जाए तो जाए कहाँ
जी।
और मेरा ख्याल है, विचार है सर
जी। बहुत बहुत शुक्रिया, इनकी राय थी। सूरज सिंह जी आप देख रहे हैं कि जनता अलग अलग राय हैं, कोई नाराज़ है, कोई गुस्से में है। ये पूरा लोगों का जो एक गुस्सा है, क्या ये न्याय तंत्र ठीक हो जाने से क्या ये भी ठीक हो सकता है?
निश्चित रूपेण, क्योंकि आपने देखा सारे यही कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा है, टाइम पे नहीं मिल रहा है, तो अब क्या करें, ये मजबूरी है। ये कोई भी ये नहीं कह रहा कि पुलिस आते ही किसी को भी एनकाउंटर में मार दे, लेकिन जब दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि अगर इसको न्यायिक प्रणाली से आप चलाते तो कई साल लग जाते, अभी तक केसेस नहीं हुए हैं, इलाहाबाद में 20-20 साल की अपील पड़ी हुई हैं, तो ऐसे में क्या च्वाइस है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर गॉडफादर मूवी देखें या पैरेलल गवर्नमेंट देखें तो वहाँ क्या होता है कि जब नॉर्मल सिस्टम काम नहीं करता है तो फिर एक अल्टरनेटिव सिस्टम डेवलप होता है,
लोग गॉडफादर के पास जाते हैं
तो यहाँ भी पुलिस ने एक तरह से गॉडफादर का काम किया है।
तो वही अगर पुलिस की आप बात कर रहे हैं उसको गॉडफादर कहा जा रहा है, लेकिन अभी हजारों केस ऐसे पड़े हैं जो फर्जी और फेक एनकाउंटर्स के हैं, उनको फिर कैसे रोका?
निश्चित रूप से, तो यहाँ पावर का जो है दुरुपयोग ना हो इसके लिए, जैसा कि आपने शाहिद भाई पहले जिक्र किया, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कुछ गाइडेंस दी हुई है, कुछ गाइडलाइंस हैं कि किन हालातों में एनकाउंटर किया जा सकता है, वो गाइडलाइंस फॉलो की जाएं। फॉर एग्जांपल एनकाउंटर करने से पहले आपको इन्फॉर्म करना होता है
जी,
आपको इन्फॉर्म करना होता है आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किस ड्यूटी पे जा रहे हैं, ताकि एक सेफगार्ड्स रहे।
केस क्या है सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं।
दूसरे मिनिमम फोर्स का यूज़ किया जाए, अंतिम हथियार है कि किसी को मारना, वरना अगर आप डिसेबल करके कर सकते हैं तो वो सारी सावधानी रखें, तो एक तरफ तो ह्यूमन राइट्स का सुरक्षा होगी और साथ ही न्याय भी होगा।
यानी आप कह रहे हैं कि मानवाधिकार के हिसाब से ही चलना चाहिए। कार्यक्रम में शामिल होने और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सूरज सिंह जी। बीबीसी इंडिया बोल में आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और नए मेहमान के साथ। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। ताज़ा खबरों के लिए आएं हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com पर। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें इजाज़त। नमस्कार।